एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। और जैसा आपने कहा, ये महज एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, ब्रह्मांड को देखने का एक बड़ा ही अनोखा नजरिया। और सोचने वाली बात है ना, कि इतनी सदियों पहले लिखी बातें आज के हमारे इस तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी से भरे और अक्सर तनावपूर्ण जीवन के लिए इतनी इतनी जरूरी कैसे हो सकती हैं?
बिल्कुल, और यही तो, यही आज हमारी खोज का विषय है। क्या लाओत्ज़ू नाम के एक रहस्यमयी ऋषि की ये छोटी सी, थोड़ी काव्यात्मक सी किताब, क्या ये वाकई हमें आज के डिजिटल युग के तनाव, भागदौड़ और कभी कभी जो वो अर्थहीनता लगती है ना, उसका कोई हल दे सकती है? और ये जो बात है कि कम प्रयास से ज्यादा पाना, क्या ये वाकई संभव है जैसा कि ये किताब इशारा करती है? चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की चर्चा को बुनते हैं।
तो शुरुआत करते हैं इस किताब के रचयिता से, लाओत्ज़ू। इनके नाम का मतलब ही बड़ा दिलचस्प है, पुराना गुरु या ओल्ड मास्टर। और सच कहूं तो इनके बारे में निश्चित तौर पर बहुत कम पता है, बहुत ही कम। ये इतिहास और किंवदंतियों के धुंधलके में लिपटे हुए एक रहस्यमयी शख्सियत है। ज्यादातर माना यह जाता है कि वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के ज़ोश राजवंश में शाही अभिलेखागार के संरक्षक थे, यानी एक तरह के लाइब्रेरियन या कहें आर्काइविस्ट।
हाँ, और उससे जुड़ी एक कहानी तो बहुत मशहूर है। कहते हैं कि वो अपने समय के समाज की, मतलब जो नैतिक गिरावट थी और जो लगातार उथल पुथल हो रही थी, उससे इतने निराश हो गए कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर पश्चिम की ओर जाने का फैसला किया, शायद पहाड़ों में या कहीं एकांत में। और जब वो चीन की सीमा के पास एक दर्रे से गुजर रहे थे, तो वहां एक संतरी था, यिनशी नाम बताया जाता है उसका।
हाँ, यिनशी।
उसने उन्हें पहचान लिया। वो उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित था और उसने उनसे आग्रह किया कि भाई आप दुनिया छोड़ने से पहले अपना ज्ञान लिख दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे कुछ सीख सकें।
और माना जाता है कि उसी संतरी के कहने पर लाओत्ज़ू रुके और उन्होंने करीब 5,000 शब्दों में अपनी शिक्षाओं का सार लिख दिया।
जी,
और वही रचना आज हम ताओ ते चिंग के नाम से जानते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उनका नजरिया उनके ही समय के एक और महान विचारक कन्फ्यूशियस से बिल्कुल अलग था।
जी,
जहां कन्फ्यूशियस समाज, नैतिकता, रस्मोरवाज, नियमों पर बहुत जोर देते थे ताकि एक व्यवस्थित समाज बन सके,
वही लाओत्ज़ू का ध्यान
पूरी
तरह से आंतरिक जगत पर था, प्रकृति के साथ सहजता से जीने पर, ब्रह्मांड की लय पर और उस अनदेखी शक्ति पर जिसे वो ताओ कहते हैं।
हाँ,
उनकी बुद्धिमत्ता किसी किताबी ज्ञान से नहीं आई थी, वो अकादमिक पढ़ाई वाली बात नहीं थी, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड की सीधी गहरी अनुभूति से जन्मी थी।
बिल्कुल। वो कहते थे कि हमें रहस्य को स्वीकार करना सीखना चाहिए और उन चीजों में शक्ति खोजनी चाहिए जिन्हें दुनिया अक्सर कमजोर समझती है, जैसे पानी का नरम होना या एक घाटी का खालीपन।
तो ये किताब ताओ ते चिंग आखिर है किस बारे में?
जैसा कि बताया, ये 81 छोटी, गहरी और अक्सर मतलब विरोधाभासी सी लगने वाली कविताओं या अध्यायों का संग्रह है। ये दो मुख्य चीजों पर केंद्रित है, ताओ और ते।
ताओ और ते।
ताओ का अनुवाद अक्सर मार्ग या पथ, द वे, किया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये ब्रह्मांड का वो मौलिक अवर्णनीय सिद्धांत है जिससे सब कुछ पैदा होता है, जिसमें सब कुछ टिका है और जिसमें सब कुछ वापस मिल जाता है। ये वो परम वास्तविकता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता।
और ते, ते क्या है?
ते का मतलब है गुण या शक्ति, या कह लीजिए आंतरिक क्षमता,
वजू,
पावर। ये वो चरित्र है या वो शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब कोई व्यक्ति या चीज ताओ के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में जीती है।
अच्छा,
ये कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आपके स्वभाव की सहज अभिव्यक्ति है जब आप ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठा लेते हैं।
तो किताब का नाम ताओ ते चिंग का मतलब हुआ मार्ग और उसकी शक्ति का शास्त्र, ऐसा कुछ?
हाँ, मोटा मोटे यही अर्थ हुआ, बिल्कुल। और इस किताब का केंद्रीय तर्क, अगर हम उसे कुछ शब्दों में समेटना चाहें, तो वो ये है कि सच्ची बुद्धिमानी, असली शांति और असल प्रभाव वो जबरदस्ती करने से, महत्वाकांक्षा पालने से या चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करने से, या कड़े नियमों का पालन करने से नहीं मिलता, बल्कि ये तब मिलता है जब हम ब्रह्मांड के कुदरती प्रवाह यानी ताओ के साथ खुद को अलाइन कर लेते हैं।
और इसके मुख्य तरीके हैं वू वे यानी सहज कर्म, विनम्रता और सादगी।
ये किताब पाठक को एक तरह से अनलर्निंग की यात्रा पे ले जाती है, मतलब सीखे हुए को भुलाने की।
हाँ बिल्कुल, अनलर्निंग।
ये हमें चुनौती देती है कि हम सफलता, ताकत, ज्ञान, यहाँ तक कि नैतिकता के बारे में अपनी जो बनी बनाई धारणाएं हैं ना, उन पर सवाल उठाएं। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपना अहंकार छोड़ें, कैसे हर समय लक्ष्यों के पीछे भागने की जिद उसे कम करें, और कैसे प्रकृति के सरल लेकिन गहरे सत्यों की ओर लौटें, जैसे पानी की शक्ति, कोमल मगर अपराजय, या एक खाली बर्तन की उपयोगिता जो उसके खालीपन में ही है।
हाँ।
ये एक अलग तरह की ताकत खोजने का निमंत्रण है। चलिए अब कुछ मुख्य अवधारणाओं में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले खुद ताओ की प्रकृति। पहले ही अध्याय में लाओ त्ज़ू कहते हैं, जिस ताओ के बारे में कहा जा सकता है वो शाश्वत ताओ नहीं है, जिस नाम से पुकारा जा सकता है वो शाश्वत नाम नहीं है।
गहरा है।
इसका सीधा मतलब है कि जो परम सत्य है, जो ब्रह्मांड का स्रोत है, वो हमारी भाषा, हमारे विचारों, हमारी कल्पना की पकड़ से परे है। उसे परिभाषित करने की कोशिश करना ही उसे सीमित करना है।
उसे जाना नहीं, जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है।
बिल्कुल, अनुभव से।
ताओ को अक्सर एक खाली बर्तन या अथाह घाटी की तरह बताया गया है, जो खाली होते हुए भी अनंत संभावनाओं से भरा है और कभी चुकने वाला नहीं।
हाँ, वो अनदेखी अनसुनी शक्ति जो हर चीज को रचती है, पालती है और बिना किसी दिखावे या श्रेय लिए अपना काम करती रहती है।
और ये विरोधाभासों के जरिए काम करती है, यिन और यांग वाली बात
का सिद्धांत। अंधेरा और उजाला, नर और नारी, कठोर और कोमल, ये सब उसी एक ताओ के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक। और यहीं से जुड़ी है वो अवधारणा जिसने पश्चिम को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है, वू वेई।
हाँ, वू वेई। इसका शाब्दिक अनुवाद तो अकर्म या बिना कर्म के किया जाता है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है।
हाँ, भ्रामक हो सकता है। वू वे का मतलब आलस या कुछ न करना बिल्कुल नहीं है।
तो फिर क्या है?
वू वे का असली मतलब है सहज कर्म या अनायास कर्म, एफर्टलेस एक्शन, यानी ऐसा काम जो बिना किसी अंदरूनी संघर्ष के, बिना अहंकार के हस्तक्षेप के, बिना जोर जबरदस्ती के, बस स्थिति की मांग के अनुसार स्वाभाविक रूप से हो जाए।
अच्छा, मतलब फ्लो के साथ।
हाँ, ये करने के बजाय होने देने की कला है। ये उस प्रवाह के साथ बहना है बजाय उसके विरुद्ध तैरने की कोशिश करने के। ये ट्राई हार्ड करने के बिल्कुल विपरीत है।
पानी, पानी इसका सबसे शानदार उदाहरण है ना, जिसका जिक्र लाओ त्ज़ू बार बार करते हैं।
बिल्कुल, पानी कभी जोर नहीं लगाता, वो हमेशा नीचे की ओर बहता है, हर रुकावट के हिसाब से अपना रास्ता बदल लेता है, हर आकार में ढल जाता है,
और नरम होकर भी सबसे कठोर चट्टानों को काट देता है।
हाँ, और सबको जीवन देता है बिना किसी भेदभाव के, और हमेशा सबसे नीची जगह पर रहने में संतुष्ट रहता है। लाओ त्ज़ू कहते हैं कि यही सच्ची ताकत और प्रभावशीलता का राज है, पानी की तरह बनना, लचीला, अनुकूलनीय, विनम्र और लगातार।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में प्रवाह के साथ बहना ये कैसे संभव है, खासकर जब चीजें हमारे मन मुताबिक ना हो, जब बॉस का प्रेशर हो या ट्रैफिक जैम हो या कोई रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तब वू वे का क्या मतलब है?
बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वू वे का मतलब परिस्थितियों के आगे हार मान लेना या मतलब पैसिव हो जाना नहीं है। इसका मतलब है स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करना, उसके साथ लड़ना बंद करना, और फिर उस स्थिति के भीतर रहते हुए सबसे कम प्रतिरोध वाला, सबसे स्वाभाविक रास्ता खोजना।
जैसे ट्रैफिक जाम में,
यानी जोर लगाने के बजाय शायद संगीत सुनना या किसी से फोन पर बात कर लेना, या बस शांत रहकर स्थिति को स्वीकार करना, वो वे के करीब होगा। आप स्थिति नहीं बदल सकते, पर आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं, और वो जो फालतू का संघर्ष है उससे बच सकते हैं।
और लीडरशिप में वो वे, ये तो और भी दिलचस्प लगता है।
हाँ, लीडरशिप में वू वे का मतलब है ऐसा माहौल बनाना जहाँ लोग खुद ही प्रेरित होकर सही काम करें, ना कि उन्हें हुक्म देकर या डराकर काम करवाया जाए।
अच्छा।
सबसे अच्छा लीडर वो है जिसके होने का लोगों को पता भी नहीं चलता, बस काम हो जाता है। वो पीछे रहकर रास्ता दिखाते हैं, लोगों को सक्षम बनाते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और जब काम सफल होता है तो कहते हमने ये मिलकर किया।
ये तो माइक्रो मैनेजमेंट का बिल्कुल उल्टा है।
हाँ ठीक उल्टा। ये लोगों की स्वाभाविक क्षमता यानी ते को उभरने का मौका देना है।
ये ते का जिक्र फिर आया। चलिए थोड़ी बात करते हैं शून्यता, ग्रहणशीलता और जिसे स्त्री गुण कहा जाता है उसकी शक्ति पर। लाओत्सु का एक बहुत प्रसिद्ध अध्याय है ना, अध्याय 11, जिसमें वो पहिए, बर्तन और कमरे का उदाहरण देते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि पहिए के 30 तीलियां होती हैं, लेकिन पहिया चलता उस खाली जगह की वजह से है जो बीच में होती है, झुरी का छेद। मिट्टी को गूंथकर बर्तन बनाया जाता है, लेकिन बर्तन की उपयोगिता उसके अंदर की खाली जगह में है।
सही बात है।
दरवाजे और खिड़कियां काटकर कमरा बनाया जाता है, लेकिन कमरे का असली इस्तेमाल उसके खालीपन में है। संदेश साफ है, जो है यानी पदार्थ वो लाभ देता है, लेकिन जो नहीं है शून्यता खालीपन वही उपयोगिता देता है।
और ये सिर्फ भौतिक चीजों पर लागू नहीं होता है ना, मानसिक शून्यता या खालीपन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, एक ऐसा मन जो पुरानी धारणाओं, पूर्वाग्रहों, पक्की योजनाओं और वो जो लगातार सोच चलती रहती है ना, उससे खाली है, वही नई चीजों को ग्रहण कर सकता है, वही रचनात्मक हो सकता है, वही अंतर्ज्ञान को सुन सकता है। ये ग्रहणशीलता, ये खुलापन, जिसे अक्सर स्त्री गुण या यिन ऊर्जा से जोड़ा जाता है, ताओ ते चिंग में बहुत अहमियत रखता है। लाओत्सु बार बार कोमलता, विनम्रता, लचीलेपन, जिन्हें पारंपरिक रूप से कमजोर माना जाता है, उनकी ताकत पर जोर देते हैं।
फिर वही पानी का उदाहरण।
हाँ, फिर वही पानी का उदाहरण। नर्म होना ही आखिर में कठोरता पर जीत हासिल करता है। ताओ को भी अक्सर रहस्यमयी माँ या घाटी की आत्मा कहा गया है, जो ग्रहणशील है, पोषण करती है।
अगली महत्वपूर्ण अवधारणा है सादगी, जिसे लाओत्सु फू कहते हैं, मतलब अनगढ़ लकड़ी।
हाँ, अनगढ़ लकड़ी, अनकार्व्ड ब्लॉक, ये हमारी वो मूल प्राकृतिक अवस्था है। इससे पहले की समाज, शिक्षा, महत्वाकांक्षा और अनगिनत इच्छाएं उसे तराश कर कुछ और बना दें।
अच्छा।
लाओत्सु मानते थे कि बहुत ज्यादा ज्ञान, खासकर जो सिर्फ दिखावे का हो, जटिल रीति रिवाज, सख्त नैतिकता के नियम और नाम शौहरत या धन दौलत के पीछे भागना, ये सब हमें हमारी सहज प्रकृति से दूर ले जाते हैं और दुख का कारण बनते हैं।
वो जोर देते हैं सादगी पर, प्रामाणिकता पर और सबसे ज्यादा संतोष पर।
हाँ, संतोष पे बहुत जोर है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि जो जानता है कि कब रुकना है वो खतरे में नहीं पड़ता, और जो जानता है कि पर्याप्त क्या है वो हमेशा संतुष्ट रहेगा।
आज की दुनिया में तो ये क्रांतिकारी विचार लगता है, जहाँ हमें लगातार बताया जाता है कि और चाहिए और चाहिए।
बिल्कुल। लाओत्सु के अनुसार सच्ची आजादी और खुशी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को कम करने और जो है उसमें पर्याप्तता महसूस करने में है। ये भी ते का एक पहलू है, संतोष से आने वाली आंतरिक स्थिरता।
और अंत में एक और गहरा विचार है, विरोधाभासों की एकता का, यिन और यांग का सिद्धांत।
हाँ, ताओ ते चिंग हमें बार बार याद दिलाता है कि जिन्हें हम विरोधी चीजें समझते हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार, मजबूत और कमजोर, भरा हुआ और खाली, जीवन और मृत्यु, वो असल में दुश्मन नहीं है।
वो एक ही बड़ी सच्चाई के दो अविभाज्य पहलू हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और मिलकर ही संतुलन बनाते हैं।
इस नजरिए को अपनाने से हम दुनिया को अच्छा और बुरा के सख्त खांचों में बांटना थोड़ा कम कर देते हैं। हम जीवन की जटिलता और उसके उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीखते हैं।
हम समझते हैं कि मुश्किल समय भी विकास का हिस्सा हो सकता है और सफलता में भी विनम्र बने रहने की जरूरत है।
हाँ, ये हमें एक ज्यादा संतुलित और शांत दृष्टिकोण देता है।
तो अगर हम इन सब बातों से निकलने वाले मुख्य संदेशों को समेटें तो पहला शायद यही है, ताओ की अगम्यता और रहस्य। सबसे गहरा सत्य शब्दों और विचारों से परे है, उसे तर्क से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना होता है।
हाँ, हमें अपनी बुद्धि की सीमाओं को स्वीकार करना होगा और रहस्य के लिए जगह बनानी होगी। शायद कभी कभी पहाड़ों में या समंदर किनारे खड़े होके जो वो अवाक कर देने वाला एहसास होता है ना, वो ताओ के ज्यादा करीब हो।
हो सकता है।
दूसरा मुख्य संदेश है वु वे, सहज कर्म का सिद्धांत। सबसे प्रभावी तरीका अक्सर जोर लगाने या लड़ने के बजाय प्रवाह के साथ जाना, परिस्थितियों के अनुरूप ढलना है।
वो ट्रैफिक जैम वाला उदाहरण,
या रात को नींद न आने पर जबरदस्ती सोने की कोशिश करने के बजाय शांत होकर येटे रहना।
हाँ, ये जीवन के हर पहलू में लागू हो सकता है। और याद रखिए, वु वे का अभ्यास ही हमारी आंतरिक शक्ति और संतुलन यानी ते को बढ़ाता है।
तीसरा, विनम्रता, कोमलता और लचीलेपन की शक्ति। पानी की तरह बनना, ये शायद ताओ तेचिंग का सबसे प्रैक्टिकल संदेश है।
दुनिया भले ही कठोरता और आक्रामकता को ताकत माने, लाओजू कहते हैं कि असली ताकत तो नरम होने, झुक जाने और फिर वापस उठ खड़े होने में है।
रोजमर्रा की बातचीत में ही देख लें।
हाँ,
किसी बहस को जीतने पर अड़े रहने के बजाय सामने वाले की बात को सच में समझने की कोशिश करना, ये ज्यादा मुश्किल है और शायद ज्यादा शक्तिशाली भी है ना।
बिल्कुल, बहुत शक्तिशाली। चौथा संदेश है सादगी और संतोष का महत्व। सच्ची खुशी और सुरक्षा चीजें इकट्ठा करने या भारी सफलता हासिल करने में नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को कम करने और जो है उसमें पर्याप्तता खोजने में है।
भारत में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे कम साधनों में भी लोग रिश्तों, त्योहारों और छोटी छोटी चीजों में गहरी खुशी ढूंढ लेते हैं।
हाँ, ये शायद लाओत्ज़ुई के पू अनगढ़ लकड़ी और संतोष के विचार के बहुत करीब है। ये एक ऐसी आंतरिक दौलत ते है जिसे कोई छीन नहीं सकता।
और पांचवा, विरोधाभासों का संतुलन स्वीकारना। जीवन में धूप है तो छांव भी लोगी, सुख है तो दुख भी आएगा, सफलता है तो असफलता भी मिलेगी।
इन दोनों को जीवन के स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना और मुश्किल वक्त को भी विकास और सीखने के अवसर की तरह देखना, यही संतुलन है। ये हमें ज्यादा सहनशील और शांत बनाता है। ये किताब वाकई ऐसे विचारों और कथनों से भरी है जो सीधे दिल पर असर करते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
हाँ।
चलिए कुछ ऐसे ही यादगार विचारों पर एक नजर डालते हैं। पहला, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, अध्याय एक से, जिस ताओ के बारे में कहा जा सकता है वो शाश्वत ताओ नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि परम सत्य हमेशा हमारी पकड़ से थोड़ा बाहर रहेगा और हमें शब्दों से ज्यादा अनुभव पर भरोसा करना चाहिए।
दूसरा, अध्याय 78 या 8 से मिलता जुलता विचार, दुनिया में पानी से नरम और कोमल कुछ भी नहीं, फिर भी कठोर और मजबूत चीजों पर विजय पाने में इससे बेहतर कुछ नहीं। ये एक जबरदस्त विरोधाभास है। यह हमें सिखाता है कि जिससे हम कमजोरी समझते हैं, धीरज, लचीलापन, विनम्रता, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
बिल्कुल। तीसरा, अध्याय 63 से, संत या बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बड़ी चीजों का प्रयास नहीं करता और इस प्रकार महानता प्राप्त करता है। यह हमारे महत्वाकांक्षाओं पर एक सवालिया निशान लगाता है। शायद बड़े लक्ष्य हासिल करने का तरीका बड़ी बड़ी छलांगे मारना नहीं, बल्कि छोटे, सहज, लगातार कदम उठाते रहना है।
प्रक्रिया पर ध्यान देना, न कि सिर्फ नतीजे पर।
हाँ,
ये वही का ही एक और रूप है।
हाँ, वो वही है ये।
चौथा, अध्याय 33 या 44 से, जो जानता है कि पर्याप्त क्या है उसके पास हमेशा पर्याप्त होगा। ये संतोष की महिमा है। आज के जमाने में जहां तुलना और ज्यादा की चाहत हमें हमेशा असंतुष्ट रखती है, ये विचार एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है।
है ना?
सच्ची अमीरी बाहरी चीजों में नहीं, भीतरी संतोष में है।
और पांचवा, अध्याय 11 से, वो पहिए, बर्तन और कमरे का उदाहरण, इसलिए लाभ उससे होता है जो है, उपयोगिता उससे जो नहीं है।
हाँ।
ये हमें खालीपन, स्पेस और शून्यता के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चाहे वो हमारे घर में कम सामान रखना हो, हमारे शेड्यूल में खाली समय रखना हो, या हमारे दिमाग में विचारों की भीड़ कम करना हो। खालीपन अक्सर रचनात्मकता, शांति और नई संभावनाओं को जन्म देता है।
ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन असली सवाल तो यही है कि इन हजारों साल पुराने, गहरे और कभी कभी रहस्यमय लगने वाले विचारों को हम अपनी 21वीं सदी की भागदौड़ वाली जिंदगी में उतारें कैसे? क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है?
मुझे लगता है बिल्कुल है। व्यक्तिगत जीवन में देखें तो वु वे का सिद्धांत तनाव कम करने का एक बेहतरीन टूल बन सकता है। हर चीज से लड़ने या उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय ये सीखना कि कब चीजों को स्वीकार करना है और कब सहजता से अपना रास्ता बदलना है।
हाँ।
भावनात्मक संतुलन के लिए भी स्वीकृति का अभ्यास बहुत मददगार है। रिश्तों में दूसरों को उपदेश देने या बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद एक शांत, स्थिर और समझदार उदाहरण बनना, ये ताओवादी तरीका है। ध्यान से सुनना भी इसी का हिस्सा है।
और काम की जगह पे या लीडरशिप में,
वहां भी इसकी बहुत प्रासंगिकता है। वु वे का मतलब है अपने सहकर्मियों या टीम के सदस्यों पर भरोसा करना, उन्हें काम करने की आजादी देना, माइक्रो मैनेजमेंट से बचना।
आदेश चलाने के बजाय सवाल पूछना, मार्गदर्शन देना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग डरे नहीं बल्कि अपनी स्वाभाविक प्रतिभा ते का खुलकर इस्तेमाल कर सकें।
और निर्णय लेने में?
निर्णय लेने में भी सिर्फ लॉजिक पर नहीं, अपनी गट सीलिंग या अंतर्ज्ञान पर भी ध्यान देना। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है थोड़ा रुककर सही समय का इंतजार करना, मतलब रणनीतिक धैर्य रखना।
हाँ, धैर्य रखना।
या वो रास्ता चुनना जिसमें कम से कम टकराव हो लेकिन जो मंजिल तक ले जाए।
संघर्ष या मतभेद की स्थिति में ये कैसे मदद कर सकता है? अक्सर तो हमारा पहला रिएक्शन होता है अपनी बात पर अड़ जाना।
जी।
या सामने वाले पर हावी होना।
हाँ, होता है, लेकिन ताओवादी नजरिया इसके उलट होगा। आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से नहीं बल्कि समझ, शांति और लचीलेपन से देना। पानी की तरह बनना, टकराव से बचकर निकल जाना या नरम रहकर सामने वाले के गुस्से को शांत कर देना।
अच्छा।
ऐसे समाधान खोजना जिनमें दोनों पक्षों की जीत हो या कम से कम दोनों स्वीकार कर सकें। इसमें ज्यादा आंतरिक शक्ति ते लगती है लेकिन ये ज्यादा स्थायी समाधान देता है।
और स्वास्थ्य के बारे में क्या इसका कोई संबंध है?
निश्चित रूप से। ताओवाद प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देता है और हमारा शरीर भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है।
सही बात है।
तो अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करना, उसे पर्याप्त आराम देना, सादा और पौष्टिक भोजन देना, जरूरत से ज्यादा थकाना नहीं, प्राकृतिक तरीके से हिलना डुलना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यही सिद्धांत लागू होते हैं। अपने विचारों और भावनाओं के प्रवाह को स्वीकार करना, उनसे लड़ना नहीं, उनमें बह जाना, ये सब हमारे आंतरिक संतुलन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मुझे लगता है कि ताओ ते चिंग से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्ची शक्ति और खुशी बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने, जबरदस्ती करने या चीजें जमा करने से नहीं मिलती। ये भीतर से आती है जब हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह और सिद्धांतों के साथ खुद को मिला लेते हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे विरोधाभासों में ताकत खोजें, कमजोरी में शक्ति, खालीपन में उपयोगिता, देने में पाना और मौन में संवाद। ये सब मिलकर हमारे ते, हमारी सहज आंतरिक शक्ति और संतुलन को निखारते हैं।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और मतलब प्रासंगिक लगी वो ये है कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज की जो हसल कल्चर है ना, और लगातार और ज्यादा की दौड़, उसका एक शक्तिशाली तोड़ पेश करता है।
हाँ, बिल्कुल।
खासकर वो वेही का सिद्धांत कि कम प्रयास से सहजता से हम ज्यादा सार्थक परिणाम पा सकते हैं। ये आज के प्रोडक्टिविटी गुरुओं की बातों से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ लगता है।
या बिल्कुल।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वाकई कम करके ज्यादा पा सकते हैं? क्या धीमी गति से चलकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? शायद ज्यादा शांति और खुशी के साथ।
बिल्कुल। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सबसे गहरा ज्ञान अक्सर बहुत सरल होता है, लेकिन उस सरलता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आसान नहीं होता।
हाँ, ये तो है।
और खुद के प्रति ईमानदारी चाहिए। ये कोई फास्ट फूड सॉल्यूशन नहीं बल्कि जीवन जीने का एक धीमा गहरा तरीका है। और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि ताओं को समझने की कोशिश छोड़ देने पर ही हम उसके सबसे करीब होते हैं,
उसे जीने की कोशिश करने पर।
हाँ, जीने की कोशिश करने पर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।